आलिया के सब सच एक्सेप्ट करने के बाद रुद्राक्ष को बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा था। हालांकि उसने ईशानी को बचाने के लिए उससे शादी की थी, पर कहीं ना कहीं आलिया को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में ईशानी के साथ उसने बहुत कुछ बुरा किया था। रुद्राक्ष को इस वक्त कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय ईशानी से बात करने के लिए। वो जानता था कि ईशानी इस वक्त मोक्ष के साथ उसके घर पर होगी। बस यही सोचकर आलिया और खुराना फैमिली को छोड़कर रुद्राक्ष रुद्री के घर जा रहा था। रुद्राक्ष काफी फास्ट ड्राइव कर रहा था, उसकी आंखें नम हो रही थी। वो धीरे से बोला, पता नहीं किस मुंह से तुम्हें फेस कर पाऊंगा ईशानी। हमेशा तुम पर गुस्सा किया, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली, प्यार करते हुए भी तुम्हारा साथ नहीं दिया। यही चाहता रहा कि तुम पूरी फैमिली के सामने माफी मांगो ताकि तुम्हें अपने पास रख सकूं। कितना सेल्फिश हो गया था मैं, ये भूल गया था कि तुमने कितना कुछ झेला होगा इन सबके चक्कर में। थैंक गॉड मैंने वो डायरी नहीं जलाई, वरना सच में आज मैं तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। बोलते हुए रुद्राक्ष की आंखों से आंसू का कतरा बह गया था। बहुत कम मोमेंट पर उसका ब्रेकडाउन होता था। सिर्फ रुद्राक्ष का दिल ही नहीं रो रहा था, इस वक्त मुंबई में भी बहुत तेज बारिश हो रही थी। ऐसे लग रहा था कि रुद्राक्ष का दर्द ये बादल बखूबी बांट रहे थे। रुद्राक्ष कुछ ही देर में अपनी मॉम के घर के आगे था। उसने जल्दी से गाड़ी पार्क की और दौड़ते हुए बारिश में भीगकर अंदर गया। सामने मोक्ष था। रुद्राक्ष की ऐसी हालत देखकर मोक्ष उसके पास आकर हैरानी से बोला, क्या हुआ, सब ठीक है ना? आप तो कोर्ट में बहुत ज्यादा गुस्से में थे और अब आपकी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही है। रुद्राक्ष का मोक्ष से बात करने का कोई मूड नहीं था। उसने मोक्ष को साइड किया और ऊपर की तरफ बढ़ते हुए बोला, मुझे ईशानी से बात करनी है, बेहतर होगा कि तुम अभी मुझसे कुछ मत पूछो। रुद्राक्ष ने अपने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए होंगे कि पीछे से मोक्ष बोला, हाँ, पर उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ईशानी इस वक्त घर पर नहीं है। रुद्राक्ष के कदम वहीं पर रुक गए थे। वो मोक्ष की तरफ पलटा और हल्के गुस्से में बोला, व्हाट यू मीन वो घर पर नहीं है? उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर थी मोक्ष, ईशानी कहाँ चली गई? तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकते हो, जबकि तुम अच्छे से जानते हो आज उसने जो भी किया उसके बाद खुराना फैमिली का हर एक शख्स उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। रुद्राक्ष की बात सुनकर मोक्ष के चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल थी। वो सिर हिलाकर बोला, चलो आपको समझ तो आया कि खुराना फैमिली के लोग कैसे हैं। खैर छोड़िए, आपके दिल में उसकी इतनी फिक्र है ये देखकर अच्छा लग रहा है। मुझे बताओ ईशानी कहाँ गई है, बाकी मुझे तुम्हारी स्पीच सुनने का कोई मन नहीं है, रुद्राक्ष जल्दी से उसके पास में आकर बोला। मोक्ष ने जवाब में कहा, ईशानी की सिक्योरिटी की परवाह करना आपका काम नहीं है। मैंने आपको बताया था कि हम जिन लोगों के लिए काम करते हैं वो मुंबई में उसके हर एक मोमेंट को ट्रैक करती है, शी इज सेफ। फिर भी मुझे बताओ वो कहाँ गई है, रुद्राक्ष ने बेचैनी से पूछा। वो ईशानी से बात करने के लिए इतनी फास्ट ड्राइव करके घर पर आया था और ईशानी थी जो घर पर भी नहीं थी। वो मॉम के साथ दीपिका आंटी के यहाँ लोनावला गई है, वो लोग आ जाएं तो बात कर लीजिएगा और प्लीज उनके पीछे मत जाइएगा, उन्हें भी थोड़ा स्पेस दीजिए, ईशानी काफी वक्त बाद अपनी फैमिली से मिल रही है, मोक्ष ने जवाब दिया। साथ ही उसने रुद्राक्ष को ईशानी के पीछे जाने से रोक लिया था। रुद्राक्ष ने भी मोक्ष की बात मानना सही समझा, वो काउच पर जाकर आराम से बैठ गया। मोक्ष ने कुछ पल रुद्राक्ष की तरफ देखा और फिर उसके पास बैठते हुए बोला, आप परेशान लग रहे हैं, ईशानी की इतनी परवाह है आपको तो फिर उसके साथ क्यों नहीं आ जाते? रुद्राक्ष ने मोक्ष की तरफ देखकर कहा, मैं उसके साथ हूं और हमेशा रहूंगा, इसके लिए मुझे तुम्हें क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है मोक्ष सिंघानिया। चलो आपने मॉम का साथ तो नहीं दिया लेकिन अपनी वाइफ के साथ तो है, ये देखकर कुछ तो सुकून महसूस हुआ। मैं ईशानी का दोस्त हूँ, उसे जल नहीं रहा, लेकिन मेरी मॉम के प्यार में क्या कमी रह गई थी भाई, जो आज तक आपका दिल नहीं बसीजा और आज आप अपने प्यार के लिए इतना बेताब होकर उस फैमिली के अगेंस्ट हो गए जिसके अगेंस्ट आपको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बोलते हुए मोक्ष की आवाज़ भारी होने लगी। वो खुश था कि रुद्राक्ष ईशानी का साथ दे रहा था, पर साथ ही ये भी चुभ रहा था कि रुद्राक्ष ने आखिर रुद्री का साथ क्यों नहीं दिया। कुछ पल रुककर रुद्राक्ष ने बिल्कुल धीमी आवाज में जवाब में कहा, मैंने कहा ना मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा और मैंने अपनी तरफ से सब कुछ किया है। तुम्हें ये लगता है कि मैंने मॉम को प्रोटेक्ट नहीं किया तो यही सही, बाकी मैं जानता हूं कि मैंने कितने सैक्रिफाइस किए हैं। आज पहली बार रुद्राक्ष ने किसी के सामने एक्सेप्ट किया होगा कि सच में उसने रुद्री के लिए कितना कुछ सहा था। रुद्राक्ष की बात सुनकर मोक्ष हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक लग्जरियस लाइफ बिताते हुए रुद्राक्ष ने कौन से सैक्रिफाइस कर दिए। सही है, अगर आपने सैक्रिफाइस किया है तो मैं चाहता हूं कि इंडिया का हर बंदा ऐसे ही सैक्रिफाइस करे, एक अच्छे आलीशान घर में रहे, स्टडी के लिए अच्छा यूनिवर्सिटी मिला और फिर एक तैयार किया हुआ बिजनेस, मोक्ष सार्कास्टिक वे में बोला। रुद्राक्ष ने गहरी सांस ले ली, मानो पहली बार अपने दिल का दर्द बाहर निकालने जा रहा हो। उसने मोक्ष की तरफ देखकर जवाब में कहा, क्या तुम्हें जरा भी आइडिया है मॉम के ऊपर कोई अटैक क्यों नहीं होते, जबकि तुम्हें अच्छे से पता है जब मैं हाई स्कूल के लिए बाहर था तब उन्हें परेशान करने के लिए डैड कुछ ना कुछ करते रहते थे। वो इसलिए क्योंकि मैं बड़ा हो गया हूं और मुझे अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करना आता है,
मोक्ष ने जवाब में कहा। उसके बाद सुनकर रुद्राक्ष हल्का सा हंसा और फिर बोला, हाँ ये सही है, किस चीज का क्रेडिट ले रहे हो तुम उन्हें मोक्ष? कभी कोई अटैक हुआ है उनके ऊपर, या डैड के भेजे हुए 100 गुंडों ने उनके साथ में बदतमीजी की? इतने सालों में क्या कभी खुराना फैमिली की तरफ से कॉल भी आया? नहीं आया, और ना ही कभी आएगा, क्योंकि वहां पर मैं मौजूद हूँ मॉम की ढाल बनने के लिए। उनके साथ रहने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं दूर रहकर भी उनके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ और कर भी रहा हूँ। हाँ मैंने लग्जरियस लाइफ बिताई है, पर कभी ये सोचा है कि कभी उन्होंने मुझे चैन से आराम करने तक का मौका नहीं दिया? जो स्टडी नॉर्मली 23 या 24 साल की एज में कंप्लीट होती है, वो मैंने 19 साल की उम्र में कंप्लीट करके 20 साल में बिजनेस संभाल लिया था, बैकफुट पर उनके लिए काम किया, 2 साल बाद फ्रंट फुट में आकर खुराना फैमिली को सक्सेसफुल किया। क्या सब कुछ इतना आसान था? रुद्राक्ष की बातों से उसका दर्द छलक रहा था। ईशानी मन ही मन काफी खुश थी, उसने कभी खुशियां नहीं मनाई थी और ना ही कभी चैन से आराम किया था। नींद भी वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता था, आखिर उसे खुराना फैमिली को सक्सेसफुल करना था ताकि विक्रांत का ध्यान रुद्री से हटकर हमेशा बिजनेस पर लगा रहे। रुद्राक्ष की बातों से मोक्ष समझ गया था, उसने धीमी आवाज में कहा, तो क्यों सहते रहे अब तक? मॉम भी आपको इतना मिस करती थी, आते क्यों नहीं हो हमारे पास? आ जाता तो क्या होता, तुम्हें उसका आइडिया भी नहीं है। खैर छोड़ो, मॉम से इस बारे में कुछ मत बताना, रुद्राक्ष ने इतना ही कहा। मोक्ष रुद्राक्ष से नफरत नहीं करता था, बस उसके दिल में एक नाराजगी थी और आज वो नाराजगी पूरी तरह मिट चुकी थी। मोक्ष रुद्राक्ष के पास खिसका और उसे हक किया। शायद बहुत साल बाद वो दोनों एक दूसरे के गले लगे होंगे। कुछ देर उनके बीच बिल्कुल खामोशी छाई रही, फिर रुद्राक्ष और मोक्ष एक दूसरे से अलग होकर बैठ गए। मोक्ष ने रुद्राक्ष से पूछा, मैंने देखा जब आप यहाँ पर आए थे आप काफी परेशान लग रहे थे, आपकी आईज भी रेड हो रखी हैं, खुराना फैमिली ने कुछ कहा?
रुद्राक्ष को हमेशा से एक दोस्त और भाई की जरूरत थी, पर उसे कभी ना तो कोई दोस्त मिला और फैमिली के नाम पर सेल्फिश खुराना परिवार था। आज मोक्ष उसके दोस्त और भाई दोनों का फर्ज निभा रहा था। रुद्राक्ष ने भी इस मौके पर उससे कुछ नहीं छुपाया, वो जवाब में बोला, आलिया ने सच एक्सेप्ट कर लिया है, उसी ने रिशानी के साथ वो सब किया था, उसके हिसाब से वो उसे सबक सिखाना चाहती थी, उसे नहीं पता था कि वो अपनी जान दे देगी। हाँ ये सही है, सबक सिखाने के चक्कर में उसने कितनी लड़कियों के साथ गलत किया है, उसे तो याद तक नहीं होगा। उसकी इस बेवकूफ़ी के चक्कर में रिशानी की जान गई सो गई, ईशानी और उसकी माँ ने भी कितना कुछ झेला है, इसका किसी को एहसास तक नहीं है, मोक्ष ने गुस्से में जवाब दिया। आलिया उसे वैसे भी पसंद नहीं थी, ऊपर से सच एक्सेप्ट करने के बाद उसने जो एक्सप्लेनेशन दी थी उसे सुनकर तो मोक्ष को और भी गुस्सा आ रहा था। रुद्राक्ष अभी तक ईशानी को पूरी तरह जानता नहीं था, उसने ईशानी के कुछ ही पहलू देखे थे, कभी अलग अलग लड़कों के साथ क्लब में दिखना, उनके क्लोज आने की कोशिश करना, तो फिर बिना किसी डर के अपनी बहन के लिए आवाज़ उठाना, इन सब में भी ईशानी का उससे प्यार करना और फिर उसके सामने बच्चों की तरह जिद करके अपनी बात मनवाना। रुद्राक्ष ने कभी नहीं सोचा था कि ईशानी की लाइफ कैसी रही होगी। रुद्राक्ष ने मोक्ष से पूछा, तुम ईशानी से कैसे मिले? क्या तुम दोनों सीक्रेट एजेंसी से काम करते हुए एक दूसरे से मिले थे या फिर किसी लॉ कॉलेज में? आपको तो सच में कुछ पता नहीं है, मोक्ष ने कड़वाहट से मुस्कुराकर कहा। भाई किसी के हंसते मुस्कुराते चेहरे पर मत जाइए, इस दुनिया में सबने बहुत कुछ झेला है, खासकर ईशानी ने। आपकी लाडली बहन ने सिर्फ ईशानी के साथ ही गलत नहीं किया, इसके चक्कर में दीपिका आंटी और ईशानी के साथ भी काफी कुछ हुआ है। कोई अपनी मर्जी से इतने खतरनाक प्रोफेशन में नहीं जाता है। रुद्राक्ष हैरानी से मोक्ष की तरफ देखने लगा। उसे अब तक यही लगता था कि वो और ईशानी किसी लॉ कॉलेज में मिले होंगे, जैसे कि अक्सर नॉर्मल मुलाकात रहती हैं, लेकिन आज उसे कुछ और ही पता चल रहा था। तो फिर तुम दोनों कैसे मिले? रुद्राक्ष ने पूछा। उसकी बात का जवाब देने के बजाय मोक्ष उठ कर गया और कुछ मिनट बाद आया, उसके हाथ में कॉफी मग थे। उसने रुद्राक्ष की तरफ बढ़ाकर कहा, लंबी कहानी है, इसकी जरूरत पड़ेगी, और हाँ लगता है आप इतने सालों बाद इमोशनल हुए हो, तो अपने इमोशंस को बचा कर रखना। पूरी बात सुनने के बाद ईशानी के पास जाने की जिद मत करना, वो आ जाएगी तब आराम से बात करना। मोक्ष की बातों से साफ था कि उसके पास बताने को काफी कुछ है। रुद्राक्ष गौर से उसकी बात सुनने के लिए तैयार था। ओके, तो अब तक आपने सबका पहलू जान लिया, लेकिन ईशानी की लाइफ कैसी रही थी उसके बारे में नहीं पता चला, तो अब वो भी पता चल जाएगा। चलिए अगले पार्ट में पता चलेगा, तो आप पढ़कर कॉमेंट कर दीजिएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं।